का था, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं संचिता सक्सेना की लिखी कहानी, एक मासूम प्रेम कहानी और एक पिता का गरूर। यूं तो ये शहर मेरे लिए अनजान ना था, पर हाल ही में मेरी नजर शहर के बीचों बीच खड़ी एक खंडहर सी इमारत पर जा टिकी। जिस जगह वो इमारत थी उसकी कीमत 5-6 करोड़ से कम तो नहीं होगी। आसपास इतना डेवलपमेंट, फिर इस इमारत का नवीनीकरण क्यों नहीं किया गया, यह बात मुझे खटकी। पास में एक चाय की घुमटी थी, मैंने चाय वाले से अपनी इस उलझन का जिक्र किया। चाय वाले ने मुझे बताया कि कहते हैं बहुत साल पहले इस इमारत से दो प्यार करने वालों ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से लोग कहते हैं कि यहां दोनों की रूह भटकती है। रूह भटकती है यह सुनकर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। पर चाय वाला ये बात बोले तो समझ आती है, पर नगर निगम वाले तथा अन्य बिल्डर्स कैसे इस बात को मान गए, ये थोड़ा विस्मय में डालने वाली बात थी। इसलिए मैंने चाय वाले से उत्सुकता वश पूछा, भैया हुआ क्या था, जरा विस्तार से बताइए ना। चाय वाले की आंख में चमक आ गई, बोला कहानी जरा लंबी है, आप यहां बैठ जाओ, मैं आपको गर्मा गर्म पकौड़े और चाय देता हूं, जब तक आप चाय पकौड़े खाओगे कहानी भी खत्म हो जाएगी। पकौड़े खाने की ना तो मेरी इच्छा थी ना ही भूख, पर कहानी सुनने के लालच में मैं वहीं पर बैठ गया। चाय वाले ने बड़े रहस्यमय अंदाज से बताना शुरू किया कि ये जो आप खंडहर सी इमारत देख रहे हैं, एक जमाने में शहर की जान हुआ करती थी। बड़े बड़े रसूखदारों के घर थे इसमें। इस बेजान सी इमारत ने न जाने कितने उत्सव देखे हैं। ये अपने जमाने की हाई प्रोफाइल पार्टीज को लेकर सदैव चर्चा में रहती थी। एक दिन फिर से ये इमारत चर्चा में आई, पर इस बार ये आखिरी बार था, क्योंकि इसी समय इस इमारत से दो प्रेमियों ने कूदकर अपनी जान दे दी। वो इस इमारत के 5वीं मंजिल के घर में रहा करती थी। वकील साहब की 3रे नंबर की और सबसे छोटी संतान थी नेहा। उसे बड़े 2 बेटे थे वकील साहब को। नेहा, जैसा नाम वैसा रूप, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत ही सुंदर थी वो। उसके दीवानों की गिनती की जाना बहुत मुश्किल था। वो जहां से निकल जाए सन्नाटा छा जाता था। हर कोई अपना काम छोड़कर उसे ही देखने में लग जाता था, पर मजाल थी किसी की जो नेहा से बात कर ले, वकील साहब का इतना रुतबा जो था। नेहा सुंदर तो थी ही, उसके कंठ में जैसे साक्षात माता सरस्वती का वास था। इसी इमारत की 3री मंजिल में एक बच्चे को संगीत सिखाने आता था निश्चल। नेहा का कॉलेज जाने का समय और निश्चल का ट्यूशन खत्म कर जाने का समय लगभग एक था। दोनों अक्सर लिफ्ट में मिला करते थे। दोनों को संगीत से प्रेम था और दोनों को ही इस विषय में गहरी जानकारी। कहते हैं जहां रुचियां एक सी हो जाए तो जान पहचान होने में समय नहीं लगता। ये दो राग कब एक धुन बन गए शायद ये दोनों भी नहीं समझ पाए। इन दोनों के इश्क की खबर नेहा के आशिकों के लिए जहर से कम ना थी। ये आशिकों की फितरत भी गजब होती है। भले ही खुद कभी लड़की से बात करने की हिम्मत ना की हो, पर ये जानते ही कि वो किसी और की हो गई है उनसे चुप नहीं रहा जाता। फिर नेहा ने तो प्रेम किया था, अगर घर वालों की मर्जी से शादी की होती तो भी वो लोग झेल जाते। ऐसे ही किसी आशिक ने दोनों के प्रेम की खबर वकील साहब को दे दी। वकील साहब के लिए यह रिश्ता नागवार था, कारण निश्चल की जाति अलग थी। उन्होंने नेहा को निश्चल को छोड़ने का फरमान सुना डाला और उसके लिए वर तलाशने लगे। मगर नेहा एक आदर्श लड़की थी, उसके लिए प्रेम कोई भोग की वस्तु नहीं बल्कि पावन बंधन था। उसका मानना था कि जिसको प्यार किया, जिससे प्यार के वादे किए, शादी भी उसी से करेगी। उसने वकील साहब को समझाने और मनाने की बहुत कोशिश की, पर वे ना माने। आखिरकार नेहा ने परिवार और प्यार में से प्यार को चुनने का फैसला किया। वो वकील साहब का घर छोड़कर निश्चल के साथ चली गई। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और साथ रहने लगे। वकील साहब बड़े रसूख वाले आदमी थे। उनके लिए बेटी की खुशी से बढ़कर अपनी इज्जत और शान थी। आज सारा शहर उन पर हंस रहा था और ये उनको कतई गवारा ना था। दो हफ्ते हो गए आज, परंतु बेटी के घर छोड़ने के बाद से वकील साहब अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। बहुत गहरा सदमा लगा था उन्हें। 16वें दिन जब वे अपने कमरे से बाहर आए तो बेहद खुश नजर आ रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, तुम मुझे थोड़ा समय दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सबसे कहो नाश्ते के वक्त मुझसे मिले। पिता के आदेशानुसार पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर इकट्ठा हुआ। सबके दिल जोरों से धड़क रहे थे और सबसे तेज वकील साहब की पत्नी का, कि ना जाने वकील साहब आज क्या कहने जा रहे हैं। आखिरकार वकील साहब ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, नेहा ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, मैं उसकी इस हरकत से बहुत आहत हुआ हूं, पर अब जब उसने शादी कर ही ली है और सारे शहर को भी इसकी भनक है, तो मैं चाहता हूं उसकी विधि विधान से पूरे धूमधाम से शादी कर दी जाए। ऐसा करने से शहर में मेरी इज्जत भी बढ़ेगी। इसे हम ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे कि वकील साहब बहुत ही धर्मनिरपेक्ष हैं, वे जात पात को नहीं मानते। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, तुम नेहा और निश्चल को कल दोपहर खाने पर बुला लो, ताकि शादी की बात की जा सके। उनकी पत्नी इस बात से थोड़ी खफा जरूर थी कि बेटी की शादी में भी इन्हें स्वार्थ सिद्धि सूझ रही है, पर वकील साहब द्वारा बेटी को अपना लेने की खुशी ने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए थे। उन्होंने ये खुशखबरी बेटी को दी। अगले दिन नेहा और निश्चल तय समय पर घर पहुंचे। दोनों बहुत ही खुश थे। खाना खाने के बाद वकील साहब ने दोनों से कहा, तुम दोनों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है, बावजूद इसके मैंने तुम दोनों को स्वीकार किया है, परंतु एक बात है जो मैं तुम दोनों से अकेले में करना चाहता हूं, अतः तुम दोनों मेरे साथ छत पर चलो। तीनों इमारत की छत, जो कि 8वीं मंजिल पर थी, पहुंचे। वहां जाकर वकील साहब ने गंभीर मुद्रा में दोनों से कहा, तुम दोनों ने मेरी इतने सालों से कमाई इज्जत मिट्टी में मिला दी, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को माफ कर दूंगा? इसके पहले दोनों कुछ समझ पाते, वकील साहब ने दोनों को छत से धक्का दे दिया। चीखों की आवाज सुनकर घरवाले बाहर की ओर दौड़े। सामने से वकील साहब आ रहे थे। उनके चेहरे पर परम शांति का भाव था। घरवाले पूछ रहे थे, क्या हुआ? वे किसी को कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। कुछ ही पल में पुलिस वहां पहुंच गई। वकील साहब पुलिस को देखते हुए बोले, मैंने ही आप लोगों को खबर करवाई थी। मैं अभी अभी अपने बेटी और दामाद का कत्ल करके आ रहा हूं और आपके सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूं। बस तभी से कहते हैं कि नेहा और निश्चल की रूहें यहां घूमती है। चाय वाले ने कहानी खत्म करते हुए कहा, 30 रुपए हो गए। मैंने 30 रुपए उसे दिए और घर की ओर चल दिया। रास्ते भर में सोचता रहा, उस रूह वाली बात का तो पता नहीं, पर ऑनर किलिंग करके वकील साहब को मिला क्या? दो मासूमों की जान गई और खुद भी जेल गए। बेवजह दो परिवार बिखर गए सो अलग। अभी आप सुन रहे थे संचिता सक्सेना की लिखी कहानी, एक मासूम प्रेम कहानी और एक पिता का गरूर। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी ने।